कुछ बात स्वामी जी महाराज ने आज गुरु महिमा का प्रसंग लिया है। बहुत कठिन भूमिका है साधकजनों। गुरु महाराज ने कैसी कृपा की है, स्वामी जी महाराज ने जिस वक्त हमें नाम दान देते हैं उस वक्त मंत्र के साथ, राम मंत्र के साथ अपना आत्मिक बल भी देते हैं, तो उस आत्म बल के बल से राम नाम, राम मंत्र हमारे हृदय में स्थापित किया जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि गुरुमुख से निकला हुआ शब्द, ये राम शब्द, नामदान, राम मंत्र जिसे कहा जाता है, गुरुमुख से जब निकलता है तो इतना शक्तिशाली होता है उनके आत्मबल के कारण कि हृदय में वास कर जाता है। संत महात्मा उदाहरण देते हैं, पीपल का पेड़ आप लोगों ने देखा है बाहर लगे हुए हैं, इनका फल कहिए जो भी कहिए, छोटे छोटे दाने नीचे गिरते हैं, वट वृक्ष के थोड़े बड़े होते हैं, इस पीपल के पेड़ के इतने छोटे छोटे होते हैं, काले काले लाल लाल रंग के, कहते हैं वे फल जो कुछ भी है कितनी देर भी क्यों ना पड़ा रहे उसे कुछ नहीं होता, बीज तो उसके अंदर हैं अभी, वो बहुत बारीक बारीक हैं और बड़े कड़े हैं वे बीज। आपने कभी देखा होगा, कभी कुआं देखा है या कभी रोशनदान देखा है कहीं पर, वहीं पीपल का पेड़ उगा हुआ होता है, ये कैसे होता है, कौन डालता है वहां पर बीज कि वह वहां अंकुरित होता है और पीपल का पेड़ खड़ा हो जाता है वहां पर, कुएं में कौन डालता है बीज, दीवार के साथ, पत्थर की ईंट की दीवार है लेकिन उसमें से भी आपको दिखाई देता है कि पीपल का पेड़ अंदर है। संत महात्मा समझाते हैं वह जो गिरता है नीचे पीपल का या वट वृक्ष का, उसे पंछी खा लेते हैं, खाके तो वो छोटे छोटे जो दाने बीज के दाने होते हैं वे इतने कड़े होते हैं, काफी देर तक वे भूमि में पड़े रहे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पंछी उन छोटे छोटे दानों को अपनी गर्मी से, अपने अंदर जो इसके जूसेस इत्यादि होते हैं उनसे पचाता है, जो हार्ड शेल होता है उसको वह फोड़ता है, तोड़ता है और फिर गोबर के रास्ते या बीट के रास्ते जब वो बाहर आते हैं तो वो बीट कहीं भी कर सकते हैं या गोबर कहीं भी कर सकते हैं, तो जहां कहीं वह पड़ता है तब बीज अंकुरित होने योग्य हो जाता है। जिस प्रकार पंछी ये मेहनत करता है, इस प्रकार साधक शरू गुरु मेहनत करके तो अपने मुख से राम नाम, राम मंत्र देता है। साधक के लिए सब कुछ बहुत आसान करके तो गुरु देता है। कल साधक चुनो इस वक्त जबलपुर में था, कुछ एक घटनाएं वहां की जो मेरे लिए स्मरणीय हैं, मुझे अच्छी लगी, वे कुछ एक आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही हैं। सुबह 5 बजे मुझे नर्मदा जी के गोद में ले गए, वहां स्वामी जी महाराज के बहुत से शिष्य जजेस हैं, दे मेक मी फील वेरी बिग, मेरे आगे पुलिस वालों का मोटरसाइकिल होता है, पीछे उनके पीछे एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की गाड़ी होती है, सब लाल बत्तियां जलती होती हैं, उनके साथ सिपाही भी बैठे होते हैं इत्यादि इत्यादि रास्ता साफ करवाने के लिए। उसके बाद जिस गाड़ी में मुझे बिठाया हुआ होता है वह भी जज साहब की ही होती है, पीछे एक और गाड़ी भी होती है। मध्य प्रदेश में साधक जनों जिस गाड़ी में मैं बैठता हूँ, जैसे स्वामी जी महाराज की परंपरा है, किसी नारी को बैठने की वे इजाजत नहीं देते, ऐसा उनका हिसाब किताब है। वे अपनी पत्नी भी क्यों ना हो, वह भी कहीं पीछे गाड़ी में बैठेगी, जिस गाड़ी में मुझे बिठाते हैं उसमें किसी नारी को नहीं बिठाते। ये सारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का है, हरियाणा में भी ऐसा ही है, पंजाब में कहीं कहीं ऐसा कर लेते हैं। बाई एंड लार्ज जिस गाड़ी में मुझे बिठा, वह बड़े कट्टर हैं, मूलचंद जी साथ होते हैं, सो परंपरा को पूरी तरह से बना के रखते हैं। मूलचंद जी की पत्नी भी अगर साथ हो तो वो साथ नहीं बैठ सकते, किसी पिछली गाड़ी में बैठेगी। पिछली गाड़ी में कुछ महिलाएं, एक तो जजेस साथ बैठे हुए, सो तीन चार गाड़ियां होती हैं। धुआंधार एक स्थान है, वो दिखाने के लिए मुझे ले गए थे। नर्मदा का जल जोर से नीचे आता है और संगमरमर की चट्टानें हैं उनके साथ वो पानी टकराता है तो उससे धुआं सा निकलता है, मिस्ट निकलती है। आप पास खड़े हो वो तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं उस मिस्ट के कारण, फॉग मिस्ट जो भी कहें आप, धुआं कहें, उसी के नाम से धुआंधार नाम पड़ गया हुआ है। सिर गीला हो जाएगा, ऐनक पर कुछ जम जाता है, दिखाई नहीं देता, ऐनक साफ करनी पड़ती है। वहीं स्नान किया, कुछ छोटी सी जगह का प्रबंध कर दिया। अच्छा लगता है जहां भी जाता हूं तो एक स्नान मुझे मिल जाए, सारी संगत की तरफ से भी हो जाता है, अपने पितरों की तरफ से भी हो जाता है, स्वामी जी महाराज की तरफ से भी हो जाता है, प्रेम जी महाराज की तरफ से भी हो जाता है। सो इतनी सारी डुबकियां सबके नाम की, ये ऐसा मेरा नियम है, चाहे गंगा जी में कभी स्नान करूं, यमुना जी में करूं, ऐसा नियम है मेरा कि इन सब के लिए डुबकी लगाना कर्तव्य भी बनता है मेरा। कोई मैं ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहा, आपको ऐसा बताने के लिए नहीं कर रहा कि कोई मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है ये सारा, इसलिए मैं करता हूं। वापस आ गया, सत्संग पहले हो चुका हुआ था, सत्संग तो 14 को था, मैं कल की बात कर रहा। 14 का दिन बहुत बड़ा दिन था, संक्रांति अमावस्या, कुंभ का नियमों के अनुसार कल अंतिम शाही स्नान था, परसों 14 को। पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ भी 14 अप्रैल से ही इस बारी हो रहा है। अंबेडकर जयंती थी, छुट्टी का दिन था, वहां पर इतने सारे सुयोग और फिर सत्संग, भव्य सत्संग। जजेस उस दिन हाईकोर्ट के जजेस स्पेशली नहीं आ सके, सभी आते हैं, कोई कपड़ों में होते हैं, कोई वैसे होते हैं अपने जो ऑफिशियल उनका ड्रेस होता है, पर सब आते हैं। परमेश्वर की कृपा है, स्वामी जी महाराज की कृपा है उन सब पर, अपना बड़प्पन भूल के तो आते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, अमृतवाणी का पाठ होता है, दो शब्द सुन भी लेते हैं। वह ये तो दीक्षा थी, उसके बाद अधिष्ठान जी देने थे, बांटने थे। मेरे लिए बहुत लंबा दिन था, समझे 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुझे मुश्किल से भोजन खाने की फुर्सत जो है वह मिली। बाहर जाके देवियों, यहाँ तो बहुत सुख है, आराम है आपकी मेहरबानी से, लेकिन बाहर जाके तो 14 साल के बाद मैं गया था वहाँ पर। सो हर प्रकार की कसर निकालते हैं वे लोग। 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुझे बिल्कुल किसी प्रकार की कोई फुर्सत नहीं। मैंने बाहर निकल के भी नहीं देखा, कमरे में ही बंद था, आना जाना मिलना इत्यादि इत्यादि। अगला दिन आ गया, आपको डिटेल्स पूछनी हो तो श्रीमती रेणु सोनी से पूछिए, वे गई हुई थी, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। अजय खुराना, साथे वंदना जी, इनके इनसे पूछना चाहें इनसे पूछ लीजिएगा, ये आपको डिटेल्स बता देंगे। मुझे इन डिटेल्स का पता नहीं होता। 15 थी, एक दो सज्जन मैसेज भेजा कि हम अमुक अमुक स्थान से जजेस हैं, जूनियर जजेस, जजेस हैं, चाहे जूनियर हैं चाहे सीनियर हैं, जजेस हैं। हमें 10 बजे हर हालत में जहां हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं वहां पहुंचना है, 2 मिनट हमें मिल जाए तो मेहरबानी होगी। नवल साहब आप जानते ही हैं, वह पर्दा उठाने वाले, ऐसे यहाँ पर्दा बड़ा शौक है लोगों को पर्दा भी उठाने का, मुझे नहीं पता था कि देखिए सो बिग इन इट, पर्दा उठाने में भी अपना बड़ा वो इस प्रकार का समझते हैं, बड़े प्रसन्न होते बड़ी खुशी से। उनको अप्रोच किया, आ गए मेरे पास। मैं पूछा कल सत्संग में क्यों नहीं आया आप लोग, कहा जब हम ट्रेनिंग पर आते हैं तो हमें छुट्टी नहीं दी जाती, बहुत कोशिश की उसके बावजूद भी पैमाने नहीं, छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। कल छुट्टी का दिन था, 14 को छुट्टी का दिन था, गस्टेड हॉलीडे, लेकिन छुट्टी नहीं थी, इसलिए आज आए हैं और आज भी 10 बजे वहां पहुंचना है इसलिए हुआ। एक सज्जन दीक्षित थे, दूसरे ने दीक्षा लेनी थी, चारों लोग शायद 2 मई को दीक्षा के लिए सब आए थे। जिन्होंने मुझे प्रभावित किया वे 2 सज्जन इस प्रकार के हैं। गाड़ी यहां से चल के कटनी पहुंची तो वहां रेलवे स्टेशन पर, कटनी बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां पर अनेक सारे पुलिस कर्मचारी जहां मैं बैठा हुआ था वहां आ गए। मूलचंद जी साथ बैठे हुए थे, अजय वंदना ये सभी थे वहीं पर। बड़े चकित किए पुलिस कर्मचारी यहां कैसे आ गए हैं, हाथ में एक पानी की बोतल पकड़ी हुई मिनरल वाटर की, पूछ रहे हैं चाय इत्यादि कॉफी क्या लेके आए। तो मूलचंद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या बात है। कहा जी हमें जबलपुर रेलवे एसपी साहब का फोन आया है, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, ये सीट नंबर है, ये बर्थ नंबर है, जाओ दर्शन भी करो और किसी चीज की जरूरत हो तो जरूरत भी पूरी करना। तो गुरुजी कौन है, मूलचंद जी से पूछा कि गुरुजी कौन है एसपी साहब के, ना हमें पानी की जरूरत थी, सब कुछ था। मूलचंद जी ग्वालियर से नाश्ता लेके चले हुए थे। स्टेशन पर पहुंचा तो जबलपुर, तो पता लगा कि ये एसपी साहब हैं, तो उनका धन्यवाद किया कि आपके एम्प्लॉयज कटनी मिले थे, आंखों में आंसू, अभी तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई थी, 14 को दीक्षा ली, पर मुझे उनका चेहरा बार बार याद आए, मैं उन्हें भुला ना सकूं। मिलने के लिए बाहर रुके, देखा कि बहुत रश है तो चले गए, रुके नहीं। 15 को मैंने किसी को रिक्वेस्ट की कि मुझे एसपी साहब से मिलना है, तो आ गए तैयार व्यार होके, सिविल ड्रेस में आ गए। कहने लगे, आंखों में आंसू थे, जो कल पाया है वह पाने के लिए ये उनकी सबसे पहली बात थी, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे पहले उन्होंने कहा जो कुछ मैंने कल पाया है इसे पाने के लिए मुझे 35 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी है, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं, ग्वालियर में जहां श्री राम शरणम अमृतवाणी का पाठ होता है, सत्संग होता है, मैं उसी पार्क में बैठ के बचपन में पढ़ा करता था, लेकिन सत्संग की ओर कभी पांव नहीं मुड़े थे। कुछ एक घटनाएं और भी बताई। 35 साल के बाद, प्रतीक्षा के बाद, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता था, मैंने अपने कांस्टेबल को कहा भी, मैं रोज जाता था श्रम शरण ग्वालियर, आज मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन फिर ना जा पाता। 35 साल निकल गए जिंदगी के इसी प्रकार, और कल जो पाया है अद्भुत, कहा अद्भुत पाया है, इसके लिए मुझे 35 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी। 35 साल की प्रतीक्षा के बाद देवियों जो पाया है उसका मूल्य वही जान सकते हैं। हमें तो घर बैठे मिल जाता है, मिला तो उनको भी घर बैठे, लेकिन 35 साल की प्रतीक्षा कोई छोटी प्रतीक्षा नहीं होती। मैंने पूछा परिवार में कौन है, बताया सब सेटल्ड है, मैं रिटायर होने वाला हूं, पर मैं आज तेरे सामने बैठ के कसम खाता हूं, जो जिंदगी बर्बाद हो गई हो गई, ये नौकरी जो मैंने करी है मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद कर दिए। जितना काम आज तक किया है इतने पशु भी करते हैं, मैंने उससे अधिक कुछ नहीं किया। पशु भी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए खाने को लाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, मैंने भी बस वही कुछ किया है। इससे अतिरिक्त आप कहो कि मैंने कभी राम राम अपने मुख से जपा है या कोई भजन पाठ इत्यादि किया है तो बिल्कुल नील, बिल्कुल जीरो हूं, और रोते जा रहे हैं, बार बार उनके आंसू उनके मुख से पूछ रहा। उस व्यक्ति की शक्ल रोते हुए की अभी भी मेरी आंखों के सामने है, मैं उनको भूल नहीं पाया। कसम खा के कहता हूं जो हो गया सो हो गया। इसके बाद मुझे सिर्फ राम राम जपने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। दूसरे व्यक्ति की बात साबित कल करेंगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत दें, पहले समय ज्यादा हो गया है। धन्यवाद।